महीनों बाद जब इनाया ने दोबारा मुंबई की ज़मीन पर कदम रखा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। दिल अजीब सा हो गया। जहन में बुरी यादें किसी रील जैसे घूमने लगीं। मानव की किडनैपिंग, धमकी भरे वो मैसेज, होटल का वो रूम, वो हवस भरी नज़रें, घटिया फोटोग्राफ्स, मानव की बिगड़ती हालत, हॉस्पिटल में बिताई वो जागती रातें, किडनैपिंग, वो अंधेरे से भरा गंदा गोदाम, मिस्टर रायचंद की बातें, वो हैवानियत भरी नज़रें, वो घना जंगल, शरीर पर लगे जख्म, उस अंधेरी रात, सुनसान जगह पर उम्मीद की जगमगाती किरण जैसे रामलाल का आना, ट्रक में तय किया मुंबई से जयपुर तक का सफ़र। जैसे जैसे सबिनाय को याद आता जा रहा था, उसके एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। अनजाने में उसने साथ चलते कायरव की बाँह को कस के थाम लिया। कायरव नितिन से कुछ बात कर रहा था। उसने तुरंत इनाया की तरफ नज़रें घुमाई। उसकी भय से फैली पुतलियाँ, तेज चलती सांसें, चेहरे का उड़ा रंग देखकर कायरव घबरा गया। ऐना, तुम ठीक हो? कायरव की आवाज़ कानों में पड़ी तो इनाया जैसे गहरी नींद से जागी। सब कुछ एकदम से आंखों के आगे से गायब हो गया। दिमाग अतीत की यादों से प्रेजेंट में लौटा। इनाया की नज़र कायरव के परेशान चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, मैं ठीक हूँ। इनाया के शब्द और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। कायरव कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ अपनी बाँह पर से हटाया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाकर उसके हाथ को कस के थाम लिया, जैसे उसे अपने होने का विश्वास दिला रहा हो। आंखों से उसे रिलैक्स होने का इशारा किया। इनाया ने सिर हिलाया और फीका सा मुस्कुरा दी। कायरव नितिन की तरफ पलटते हुए बोला, नितिन, तू मानव और काकी को सेफली उनके घर छोड़ दे और अपने स्पेशली ट्रेन गार्ड को उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे। याद रहे, इस बार कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता फिर से हमारे दुश्मनों को इनाया या उससे जुड़े लोगों को टारगेट करने का मौका मिले। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं सारी अरेंजमेंट करने के बाद ही घर जाऊँगा। तो भाभी के साथ टेंशन फ्री होकर घर जा, वो काफ़ी थकी हुई भी लग रही है, रेस्ट की ज़रूरत होगी उन्हें। कायरव ने सिर हिलाया, फिर मानव और अनीता जी की तरफ पलटते हुए बोला, आप लोग नितिन के साथ जाओ, वो आपको घर छोड़ देगा। और टेंशन मत लेना, मैंने सारी अरेंजमेंट करवा दी है। अब आपको किसी से डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे रहते कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें आप पर विश्वास है, आप भी हमारी चिंता छोड़ दीजिए और इनाया के साथ घर जाइए, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। कायरव ने सिर हिलाया। पहले वो दोनों नितिन के साथ निकले, फिर दूसरी कार में कायरव इनाया के साथ बैठा और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अब बताओ मुझे, उस वक्त तुम्हें क्या हुआ था? कायरव ने इनाया की तरफ पलटते हुए गंभीरता से सवाल किया। इनाया आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो मुझे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए सच सच बताओ मुझे, उस वक्त क्या हुआ था तुम्हें? इतना पैनिक क्यों कर रही थी तुम? इनाया ने अपनी पलकों को झुका लिया, चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। मुझे वो सब याद आ गया जो कुछ महीने पहले हुआ था, जिन हालातों में और जिस तरह मुझे यहाँ से जाना पड़ा था, मुझे वो सब एक बार फिर याद आ गया था। मैं करना चाहती नहीं थी, खुद ही याद आ गया था। इनाया, इधर देखो मेरी तरफ। कायरव की खहरी शांत आवाज़ कानों में पड़ी तो इनाया ने धीरे से अपनी झुकी पलकों को उठाया और उसकी निगाहें कायरव की निगाहों से टकरा गईं। ऐना, आई नो तुमने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है, बहुत कुछ फेस किया है, अपनी जान बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। सिचुएशन ख़राब थी, फिर भी तुमने हार नहीं मानी, तुम लड़ी और ख़ुद को बचा कर रखा। उन हालातों से लड़कर बाहर निकलना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन तुमने किया। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। आई नो कि जो तुमने फेस किया उसे भुलाकर आगे बढ़ना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी भूलने नहीं कहूँगा। मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि वो बुरा वक्त था जो अब बीत गया है, उस वक्त तुम अकेली थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें, तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट कर सकती हो कि जब तक तुम मेरे साथ हो बिल्कुल सेफ हो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें किसी से डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना विश्वास तो है ना तुम्हें मुझ पर? इनाया ने धीरे से सिर हिला दिया, थोड़ा खिसक कर कायरव के पास आई और उसके गले से लग गई। कायरव ने उसे बड़े ही एहतियात के साथ अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे वो कांच की नाजुक सी गुड़िया हो, जरा सी सख्ती और वो टूटकर बिखर जाएगी। तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी बात को अपने मन में रखकर अंदर अंदर घुटती रहो, अकेले परेशान होती रहो। अगर कोई बात तुम्हें परेशान करती है तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में हो उसे मुझसे शेयर कर सकती हो। कायरव ने इनाया के गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा। इनाया ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। अब डर लग रहा है तुम्हें? जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। तुम्हें पता है, जब वो गुंडे मुझे होटल रूम में लेकर गए थे और ब्लैकमेल कर रहे थे, मैंने तब भी उनसे कहा था कि अगर मेरे हस्बैंड को भनक भी लग गई कि उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, तो वो अगर पाताल में भी छुप गए तब भी एक एक को ढूंढ कर निकालेगा और उनसे मेरा बदला लेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आई प्रॉमिस यू जान, जिसने भी तुम्हें चोट पहुँचाई, तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें उन हालातों में पहुँचाया, मुझसे दूर जाने पर मजबूर किया,
उन सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। कायरव के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे, आंखें खतरनाक अंदाज में से कुड़ी थीं और अंदाज जुनूनियत भरा था। तुम उनके साथ क्या करोगे? इनाया आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। कायरव अपने सेंसेस में लौटा, प्यार से इनाया के गाल को छुआ। तुम्हें अब इन सब के बारे में सोचकर परेशान होने, इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तुम्हें बस अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना है, खुश रहना है, बाकी सब संभालने के लिए मैं हूँ, समझी? इनाया ने सिर हिलाया और वापस उसके सीने से लग गई। कायरव ने उसे अपने आगोश में समेट लिया और उसके सिर को चूम लिया। मानव खामोश बैठा था। कितने महीनों बाद वो मुंबई वापस लौटा था। उन जानी परचानी गलियों से गुजरते हुए बीते कल की कुछ अच्छी बुरी यादें उसके जहन पर छाने लगी थी, ऐसी कि किसी सड़क पर उसकी नित्या से मुलाकात हुई थी। तब उसने कहां सोचा था कि वो अनजान लड़की, जिसे उसने इंसानियत के नाते यूं ही बचा लिया था, उससे वो कभी इतना प्यार करने लगेगा कि उसके बिना जिंदगी बेमानी लगने लगेगी। उस रात जिससे इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी, एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत बन जाएगी, जिसके बिना गुजारा एक एक पल सदियों जितना लंबा लगेगा। कहां सोचा था उसने कि जिसके साथ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था, एक दिन उसे बिना कुछ बताए उसकी जिंदगी से गायब होना पड़ेगा, जिसके बिना उसकी सुबह अधूरी और रातें सूनी थी, उसके बिना उसे इतने दिन और इतनी रातें गुजारनी पड़ेंगी। नित्या की याद आई तो उसकी फिक्र भी सताने लगी। कितना वक्त हो गया उसे देखे और उससे बात किए, पता नहीं वो कैसी होगी। दिल किया अभी उसे फोन करे और उससे बात करे, लेकिन उसका नंबर डायल करते करते रुक गया। ये सही वक्त नहीं है, रात हो गई है, आई थिंक मुझे कल सुबह तक का इंतजार करना चाहिए और फोन पर बात करने के बजाय जाकर उससे मिलना चाहिए, मानव ने मन ही मन फैसला किया और फोन वापस रख दिया। कुछ देर बाद कार रुकी। मानव ने बाहर देखा तो वो घर पहुंच गए थे, लेकिन कार घर से थोड़ा पीछे रुकी थी क्योंकि आगे एक और कार खड़ी थी। मानव बाहर निकला, नजरें अपने घर की तरफ घुमाई तो अचानक ही उसका ध्यान उस कार के पास खड़ी लड़की पर गया। जीन्स, वुलन कुर्ता और खुले बाल। पीछे से देखकर ही मानव उसे पहचान गया और उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, जैसे बदन जैसे अकड़ गया था, कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे।
To be continued.